نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة آل عمران آيات نمبر 144 سے 155 تک کریں گے. دو رکوعات ہیں. لاسٹ لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کچھ یاد ہے کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیا ٹاپک ہے ہمارا جو آج کل چل رہا ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہی چلے گا ابھی آلموسٹ اس سورہ کے آخر تک. جنگ احد کا، ٹھیک ہے، غزوہ احد. اچھا، اب غزوہ احد سے ہمیں کیا کرنا بھائی؟ ہو گئی جنگ، ہو گئی، اب ختم. ہم کیا اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ جو بھی ہوا سو ہوا. اصل میں کوئی بھی قرآن پاک کی بات ایسے ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی فالتو ہو. قرآن قیامت تک کے لیے، اس کی باتیں حکمت بھری ہیں، ان میں لیسنز ہیں. چاہے جنگ میدان جنگ میں ہو یا زندگیوں کی جنگیں لڑی جائیں، گھروں میں جنگیں ہیں، آپ کی جابز پہ آپ ایک جنگیں لڑتے ہیں، آپ اپنے معاشرے میں ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، حق اور باطل کے مارکے تو رہتے ہیں. دیکھیں، یہ صرف یہ نہیں کہ کوئی وہ تلواریں لے کے ہی میدان میں کھڑا ہے تو وہی جنگ کر رہا ہے. کیا ہماری زندگیوں میں نہیں جنگیں جاری ہوتی؟ کبھی کسی میں محاذ پہ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی محاذ پہ، برائیوں کے خلاف، باطل کے خلاف، فحاشی کے خلاف، شرک کے خلاف، بدعتوں کے خلاف، کتنی جنگیں ہیں جو ہم لڑ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. اب ہاں، نوعیت الگ ہوتی، ظاہر تلواریں لے کے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جنگیں جاری ہیں. اب ان زندگی کے محاذوں پہ لڑی جانے والی جنگوں میں کبھی شکست بھی ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، کبھی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں، ایسی مصائب آ جاتے ہیں، ایسے مسائل آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ایسے زندگی میں پرابلمز آ جاتے ہیں جن میں آپ کو شکست ہو رہی ہوتی ہے، آپ فیل کرتے ہیں کہ میں تو ہار گئی. پھر ایسی جگہ پہ سپورٹ کہاں سے لیں گے؟ کہاں سے اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ آپ کو ملے گا اس قرآن سے؟ کہاں سے آپ کی ہمت بندھے گی اس قرآن سے؟ جب بھی حالات ناموافق ہوں، نیگیٹو ہوں زندگی میں، تو احد والوں کو یاد کر لیں. اتنی بڑی نیگیٹیوٹی سامنے آئی تھی، پھر کیسے وہ کھڑے ہوئے، کیسے لوگوں کے ریئیکشنز ہوئے، کیا ریئیکشن کرنا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ پتا چلے گا. تو یہ باتیں ہمیں ان سب چیزوں کا سکھاتی ہیں. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے پڑھا ان لوگوں کے بارے میں جو متقی ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، جن کے لیے جنت ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ایک اس کے ساتھ کی میچنگ دعا. کئی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، اس کے ساتھ کوئی میچنگ دعا آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کی ایک میچنگ دعا میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں جو آپ لکھ سکتے ہیں. اور یہ دعا ہم مانگتے بھی ہیں اپنی نمازوں میں جن کو آتی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنک انت الغفور الرحیم. تو یہ دعا بھی، اس دعا میں بھی کیا ہے میچنگ کس لیے ہے کہ اس دعا میں بھی کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا مگر تو. اور یہاں پہ بھی یہی بات کہی گئی. اور پھر ہم نے غصے پہ قابو پانا، لوگوں کو معاف کرنا، خرچ کرنا، اس بارے میں پڑھا. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مان لینا اور اس کے اوپر فوراً اللہ سے توبہ کرنا، یہ ہیں ٹریٹس ان لوگوں کے جو متقی ہوتے ہیں اور جن کے لیے جنت ہے. تو आपने गुस्से को काबू करने की कुछ कोशिश की, किसी को माफ किया। इसी तरह हमने ये पढ़ा कि हम किस तरह इस बात को फेस करें कि जिस वक्त कोई कोई मुश्किल आती है, कोई गम आता है, तो इसके पीछे जो बात है, क्यों आया, ये क्यों आया, और हम इसके ऊपर बहुत अपने अंदर महसूस करते हैं, एक उबाल आता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं जन्नत में भेज देना, ये तुम्हारी टेस्टिंग तो होगी इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने तो इसको वाज़े करना, और ये मुश्किल हालात में ही हो सकता है, और ये सब इसीलिए हो रहा है कि अल्लाह पाक करे, खालिस करे, और आज भी ये बात आएगी। और अगर तुम्हें कोई जख्म पहुंचता है तो किसी और को भी कुछ पहुंचा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि ओ हम तो बड़ी मुश्किलात में रहते, देखो इन काफिरों को, इन्हें कितने मजे में रह रहे हैं ना। नहीं, आपको क्या पता उनकी जिंदगियों में भी क्या क्या चल रहा है। ये दिन है, अल्लाह उलटता फेरता रहता है। तो मतलब ये नहीं, कभी किसी नेक इंसान को तो कोई गम आ ही नहीं सकता। लोग अक्सर इस चीज को भी ना बहुत ही नेगेटिव लेते हैं। अगर कोई बेचारा नेक बनी, कोई उसे कोई कोशिश कर ही रहा है, कोई अल्लाह के दीन पे चलने में अपने आप को लगा रहा है, खपा रहा है, तो लोग सोचते हैं अब इसके ऊपर तो कोई गम नहीं आना चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई ना, इसका मतलब यही है कि ये हाँ, तो ये इसके अंदर कोई खराबी है, जब ही तो आई है, या तो ये कुछ कोई गलती इसने जरूर की है। तो ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज भी हमें इतनी प्यारी टिप्स मिलती हैं, इतनी प्यारी रहनुमाई मिलती है, अल्लाह ताला किस तरह गाइड करता है इंसान को, जो कुरान से जुड़ा होता है। देखें कैसे अल्लाह ताला मरहम रखता है उसके जख्मों पर, आज आप देखेंगे इन आयात में। और फिर से याद कर लें, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक गज़वाए उहद को, तो आपको पढ़ना चाहिए। तजल्लियात नबुवत से एक दफ़ा आप निकालें उसको, और एक दफ़ा पढ़ें कि वो क्या हालात थे जिनमें ये सारा, ये जो आयात नाजिल हुई हैं, इनका बैकग्राउंड जो था, ताकि आपके सामने थोड़ा वो सारा सीन आ जाए। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि उहद में मुसलमानों को फतह मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो लोग जो जबले रमात पे थे, उन लोगों ने सोचा, जब उन्होंने देखा कि माले गनीमत लोग जमा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि बस जंग खत्म हो गई है, अब हम भी उतर के जाके हम भी माले गनीमत समेटते हैं। उनके जो लीडर थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, उन्होंने मना भी किया कि मत जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहीं जमने का हुक्म दिया, चाहे शिकस्त हो जाए, चाहे परिंदे उनकी बोटियां नोच लें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि यहीं पे आपने रहना है, आपने यहाँ से हटना नहीं। वो कहने लगे नहीं, वो तो उसलिए कहा था कि जिस वक्त जंग हो रही, फिर जंग ही खत्म हो गई है, तो आप किस दिया हमें, कह रहे अब हम तो जा रहे हैं। तो 40 लोग जो थे वो उतर गए, सिर्फ 10 लोग वहां पे रहे। और इस बात को जब हजरत खालिद बिन वलीद, उस वक्त तो मुशरिकी थे, तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, वो आए सबसे पहले, तो उन्होंने जो जबले रुमाद के ऊपर वो सहाबा थे जो जम के खड़े हुए थे, पहले तो उनको शहीद किया, क्योंकि वो तो बेचारे 10 थे, ये 200 थे, घुड़सवार थे, इनका मुकाबला वो कहाँ से करते। तो उनको पहले शहीद किया, फिर उसके बाद वो वहां से उन्होंने जो मुसलमानों पे पीछे से आके हमला किया, और उन्होंने अपने फिर काफरों को भी आवाजें दे दी कि तुम भी वापस आ जाओ, वो उन्होंने भी आके हमला कर दिया, वो जो भागे जा रहे थे वापस, वो भी वापस आ गए। तो अब आप सोचें कि मुसलमानों की हालत क्या थी, कि कहाँ वो काफरों को भगा चुके थे, कहाँ अब ये था कि वही आके इनको पर टूट पड़े थे। इससे मुसलमानों में बड़ी बौखलाहट पैदा हो गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 7 अंसार और 2 मुहाजरीन थे, क्योंकि भगदड़ मच गई ना। जब भी पैनिक की सिचुएशन होती है ना, मसलन कहीं आग लग जाए, कहीं ऐसा आप किसी को कोई इतला मिल जाए कि कोई कोई मसलन कोई किसी जगह पे पता चल जाए यहाँ पे बम रखा हुआ है, तो लोग कैसे भागते हैं, किसी को किसी का नहीं होश होता। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के पीछे से, सॉरी पहाड़ के पीछे से हज़रत खालिद बिन वलीद आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुसलमानों को आवाज़ें दे रहे हैं, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन उस सारी जो भगदड़ मची हुई है उसके अंदर कौन सुन रहा था। और इस बात को काफरों ने सुन लिया, वो करीब थे, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले शुरू कर दिए। उनकी ये कोशिश थी कि मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही हम आप सल्लल्लाहु को खत्म कर दें। उस मौके पे आपने फरमाया था कौन है जो इनको मुझसे दूर कर दे, तो उसके लिए जन्नत है या वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। इस पर अंसारी जो थे, वो जो 7 अंसार थे, वो एक एक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके लड़ते रहे, लेकिन सातों के सातों शहीद हो गए। अब दो कुरैश के मुहाजिर ये बाकी रहे थे, एक तलहा बिन उबैदुल्ला और एक साद बिन अबी वक्कास। तो अब मुशरिकीन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले कर रहे थे, और यहाँ तक कि आपको एक पत्थर लगा जिससे आप पहलू के बल गिर गए, और आपका निचला जो दांत था वो टूट गया, निचला होंठ जख्मी हो गया। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सर पे जो हेलमेट था उससे वो उसकी जो कड़ियां थी वो चेहरे मुबारक में धंस गई, और कंधे पर भी तलवार की एक सख्त जर्ब लगी जिसकी तकलीफ 1 महीने से भी ज्यादा आपको महसूस होती रही। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त डबल जीरा पहन रखी थी, इसलिए वो काट नहीं सकी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो दो कुरैशी भी सोचे लड़ रहे हैं, साद बिन अबी वक्कास और हजरत तलहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लड़ रहे हैं, और जाहिर है फिर भी उनका वो लोग इतने हैं कि उनका मुकाबला मुश्किल हो रहा था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन अबी वक्कास को तीर पकड़ा रहे थे, फरमाते चलाओ तुम पर मेरे माँ बाप फिदा हो। ये वाहिद सहाबी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तुम पे मेरे माँ बाप फिदा हो, वरना हर सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते थे कि या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, लेकिन इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उस वक्त हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला, उन्होंने उनकी उंगलियां जख्मी हो गई थी, तो उनके मुंह से सी निकली थी, तो आपने फरमाया नहीं, अगर तुम बिस्मिल्ला कहते ना तो फरिश्ते तुम्हें उठा लेते और लोग देखते रहते। उस मुश्किल घड़ी में जिब्राइल अलैहि सलाम और मीकाईल अलैहि सलाम उतरे थे, और उन्होंने भी आपका दिफा किया था। तो फिर कुछ मुसलमान भी पलट के वापस आए, जिनमें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, अबू बैदा बिन जर्राह थे, जिन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर जो कड़ियां थी चेहरा मुबारक में उनको निकाला था, जिससे उनका एक दांत भी टूट गया था। तो जिससे जब वो एक दांत टूट गया हुआ था, लोग बाद में देखते थे दूसरी कड़ी निकाली तो दूसरा दांत भी टूट गया, तो दो दांत मिसिंग थे उनके। जब भी लोग इनको देखते थे ना, तो देख के वो ये कहते थे ये दांत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कड़ियां निकालने के लिए ये दांत शहीद हुए। उस मौके पे वहां पे जिस वक्त मैदाने जंग में, उस वक्त जाहिर है जो लोग जमे हुए थे वो तो लड़ ही रहे थे, तो मुसअब बिन उमैर के हाथ में झंडा था, उनको जब कुफार ने शहीद कर दिया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। तो काफरों ने ये ऐलान कर दिया, चीख चीख के कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया, और ये खबर इतनी तेजी से फैली, और इससे मुशरिकीन का दबाव तो कम हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस अब तो हमारा मकसद पूरा हो गया, अब इनको क्या मारना, अब तो खत्म है, ये इनके लीडर ही खत्म हो गए तो इनका क्या। और मुसलमानों के लेकिन जिस तरह से उनके हौसले टूट गए, क्योंकि उन्होंने कहा जब हमारे नबी नहीं रहे तो फिर हमारा क्या, और बाज ने ये कहा कि नहीं, जिस चीज पे उन्होंने जान दे दी तुम भी उस पे जान दे दो, तो ये उनके ऊपर इतना जैसे समझ लेंगे गम का पहाड़ टूट गया था। ये लोग ऐसे नहीं, हमारी तरह के नहीं थे, सिर्फ जुबानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले नहीं थे, ये वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी जमीन पे नहीं पड़ने देते थे। जी हाँ, जमीन पे नहीं पड़ने देते थे, आगे लपक लपक के आपके वुजू का पानी लेते थे कि उससे अपने चेहरे पे मल लें। ये वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाने निछावर करने वाले थे। तो उस वक्त ये जो खबर फैली है इसने मुसलमानों के होश उड़ा दिए थे। अब उसी का कुछ जिक्र ये आयत जो आ रही है इसमें है। अब जिस वक्त ये हुआ कि ऐसी खबर फैली है, उस वक्त देखें आप ये समझ लें कि मुसलमानों के अंदर इस वक्त जो ये जंगे ओहद के लिए निकले थे, तीन ग्रोह थे। एक ग्रुप का तो आपको पता चल गया ना, जो मुनाफिकीन का था अब्दुल्ला बिन उबई के साथ, वो तो पहले ही वापस चला गया, 300 पीपल। अब जो 700 रह गए हैं ना, इनमें भी सब ऐसे नहीं थे जो खालिस पक्के ऐसे मुसलमान हो, इनमें भी आप 2 ग्रोह समझे। एक ग्रोह उनका जो मुनाफिकीन कह सकते हैं या कमजोर मुसलमान कह सकते हैं, दूसरे थे जो पक्के डट के रहने वाले थे, ठीक है। तो इनमें भी 2 ग्रोह थे। अब जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खबर फैली है, तो वो मौका था जिसमें के फिर जो काफिर थे, जो मुनाफिकीन या ये जो लोग कमजोर ईमान वाले थे, उनमें एक ऐसी बद्दली और परेशानी पैदा हुई कि उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौत हो गए, तो अब वो फौत हो गए हैं, तो फिर अब हमें भी फिर वापस पलटना चाहिए भाई, हम भी जाएं। अब ऐसा करते हैं किसी तरह, अब्दुल्ला बिन उबई से कहते हैं कि वो जाके अबू सुफियान से कहे हमारे से दोस्ती कर ले और हम वापस उनके साथ मिल जाते हैं, मतलब फिर हमारा भी इस तरह रहने का क्या है, अब हमारा क्या बनेगा, हम तो इस तरह से आए थे इस दीन में, तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया से चले गए, अब क्या करना। यानी उनके बिल्कुल, उन्होंने हिम्मत हार दी, उन्होंने कहा हम वापस ही चलते हैं। ऐसे भी लोग थे। तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, और इसमें बड़ी हिकमत थी, क्योंकि एक दिन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई फौत भी हो जाना था, उसके बाद तो वही आनी नहीं थी, तो इन मुसलमानों को उस वक्त के लिए भी तैयार कर दिया गया। वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले ये देखें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। लोगों याद रखो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ नहीं है मगर एक रसूल ही है। क्या मतलब, वो खुदा नहीं बन गए, नऊज़ बिल्ला के। ये तुम सोचो कि उनको तो मौत ही नहीं आ सकती, और वो कैसे फौत हो गए, वो तो एक रसूल है, यानी एक इंसान है। इंसानों में सूरह कहफ के एंड में हम पढ़ते हैं ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कि आप कह दीजिए कि मैं इंसान ही हूं तुम्हारे जैसा। जैसे इंसानों को मौत आती है, इंसानों को भी तकलीफ पहुंचती है, इंसानों को भी दुख होता है, इंसानों को भी खुशी होती है, इंसान भी परेशान होता है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। बाज दफा ना लोग उनको सुपर नेचुरल समझ लेते हैं, उनको क्या, वो तो अल्लाह के नबी थे, उनका क्या, नहीं अल्लाह के नबी थे लेकिन वो इंसान ही थे, उनको भी जख्म लगा, उनको भी चोट लगी, उनका भी दिल भी दुखता था। ऐसे नहीं है कि उनको कुछ होता ही नहीं था, इसलिए उनके लिए तो माफ करना आसान है, हमारे लिए माफ करना मुश्किल है, हमें दर्द ज्यादा होता है। नहीं तो वो भी कोई सुपर नेचुरल नहीं थे, इंसान थे। इसी में तो उनकी बड़ाई है कि वो इंसान थे इसके बावजूद उन्होंने माफ किया, वो इंसान थे इसके बावजूद उन्होंने जख्म खा के जाने दिया, इंसान थे इसके बाव तो फिर उन्होंने इतनी तकलीफें उठा के सबर किया, वरना अगर उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती तो फिर क्या बड़ी बात थी, फिर क्या उनकी काबिलियत होती। काबिलियत ही इस बात के ऊपर है कि उनको भी तुम्हारी तरह वो सब चीजें पेश आई, बल्कि हर एक इंसान से ज्यादा उनको तकलीफें पेश आई जिंदगी में, उनको मसाइल फेस करने पड़े, लेकिन फिर देखो वो कैसे थे, इसी में तो कमाल है। तो वो रसूल ही है, रसूल मतलब पैगाम रसा, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाले। पद खलत मिन कबल ही रसूल, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं, वो भी इंसान ही थे, जैसे वो रसूल थे इसी तरह ये भी रसूल है, जैसे वो दुनिया में आए और दुनिया से चले गए, इसी तरह ये भी दुनिया में आए और दुनिया से चले जाएंगे। अफा इम्माता, अब क्वेश्चन ये है, क्या फिर अगर माता वो मर जाए, औ कुतिला या वो कत्ल कर दिए जाए, ऐसे रसूल तो कत्ल नहीं होते, मगर जैसे अब इस जंग के अंदर अफवाह फैल गई कि वो कत्ल कर दिए गए, तो क्या अगर वो कत्ल कर दिए जाए, अल्लाह ताला का सवाल है, इनकलबतुम अला अकाबिकुम, तुम क्या फिर जाओगे अपनी एड़ियों के बल। यानी एड़ियों के बल फिरना क्या होता है, कि लौट जाना, जहां से आए थे वहीं वापस चलेगा, उन्हीं फुट स्टेप्स पे वापस चलेगा। इतनी बात के अंदर हमने क्या सीखा? अफ इम्माता, कुरान में आयत होने के बावजूद लोग इस बात पे लड़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत नहीं आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए। आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि आप पे मौत तारी हुई है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते पीते नहीं थे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां नहीं की? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नहीं हुई? जैसे तमाम इंसानों के साथ ये सारी चीज़ें, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे इस दुनिया में? तो जैसे बाकी इंसानों के साथ ये दुनिया की चीज़ें, हर इंसान होने के नाते जो उसके साथ बशरी तकाजे हैं, वो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी थे। तो क्या मौत का आना उनके ऊपर क्या नामुमकिन था? याद रखिए, हई और कयूम जात सिर्फ अल्लाह की है। अगर हम किसी और में भी मानते हैं कि फलां भी हई और कयूम है, अल्लाह ताला माफ करे, तो ये शिर्क हो गया। अपना अकीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही करने की जरूरत है। अपना सही अकीदा सही कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। और आप देखें, इस एक बात नोट करें, हमने पिछली दफा ये बात पढ़ी थी ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि ये कौम कैसे फला पा सकती है जो अपने रसूल को जख्मी कर दे, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया आयत 128 में, लैस लक मिन अल अम्र शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअद्दिबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। ए नबी, आपका तो कोई इख्तियार नहीं है। हम सोचते हैं ना कि नबी अलैहिस्सलाम या रसूल जो मुंह से निकाले, अल्लाह ताला तो उसको टाल ही नहीं सकता। अल्लाह ताला नाउज़ु बिल्ला कोई मजबूर है उनकी बात एक्सेप्ट करने में। और बाज़ लोगों ने शेर बनाए हुए, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, नातों में ये बोल रहे होते हैं। कैसे आपने सोच लिया? कुरान आपको बताता है कि याद रखें, फाइनल अथॉरिटी अल्लाह सुबहाना हो ताला है, अल्लाह सुबहाना हो ताला है। अल्लाह की बराबरी कोई नहीं कर सकता, और अल्लाह को मजबूर कोई नहीं कर सकता, और अल्लाह किसी की मोहब्बत में मजबूर नहीं है। नबी जितने भी बुलंद हो जाएं, वो बंदा ही है, वो खुदा का बराबर नहीं हो सकता। ये जहन में रखें बात को। जब बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी फरमाई जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद आई, अल्लाह ताला ने उसी वक्त फरमाया नहीं, लैस लक मिन अल अम्र शय, ये नहीं कि अगर मेरे नबी ने कह दिया तो बस ठीक है, वो जो भी कहेगा वो बात मैंने माननी है, नहीं, अल्लाह मजबूर नहीं है। तो ये पता चलता है कि अल्लाह ताला के पास इख्तियार है, जिसकी जो बात चाहे माने, जिसकी जो बात चाहे ना माने, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। और हम कई मिसालें इसमें देखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ की थी, नहीं मानी गई, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की थी, आगे सूरह मायदा में आता है, अल्लाह मुझे इस कौम से जुदा कर दे, नहीं, अल्लाह ने किया। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो बात उन्होंने मुंह से निकाली वो वैसे ही होनी है और अल्लाह ने करनी है वैसे ही, नहीं, अल्लाह की मर्जी है वो करे, वो अल्लाह के महबूब है, लेकिन अल्लाह की मर्जी है कि वो करे या ना करे। इस बात को समझ ले। तो अगर वो फौत हो जाते हैं या वो कत्ल कर दिए जाते हैं, तो तुम क्या वापस चले जाओगे? जिस तरफ से, जिस रास्ते से आए हो, क्या उसके ऊपर वापस लौट जाओगे? अब ये कितनी बड़ी एक बात है समझने की। इसलिए कि आप देखें, पहले इस बात को समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा कितना बड़ा था सहाबा कराम की जिंदगी में। उनके लिए तो समझ ले ऐसे था जैसे कयामत आ गई है, यानी कोई कयामत से कम नहीं थी ये बात। ये मैं आपको बताऊं कि उनके लिए ऐसे ही था कि कयामत आ चुकी है, अब कयामत आ गई है। उनकी जिंदगियों में इससे बड़ा कोई हादसा नहीं हो सकता। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ना कि मेरे सबसे मेरी जिंदगी का 100 साल से भी ऊपर वो जिए थे, तो कहते हैं मेरी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन वो था जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, क्योंकि ये तो अंसार सहाबा में से है ना। और सबसे कबीर दिन, सबसे डार्क दिन मेरी जिंदगी का वो था जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ लेकर गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए थे। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसे ना कहो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए हैं, वो तो ये तुम उनके शान में गुस्ताखी कर रहे हो। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो फौत हो, तो फिर कोई कैसे कह सकता है? अल्लाह अकबर। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस बात को कि सहाबा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लें सब कुछ थे उनका, उनके माँ बाप की जगह, उनके हर रिश्ते से ज्यादा बढ़ के थे। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा गम ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या चीज ट्रेड की कि देखो तुम्हारा दीन किसी शख्सियत के पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि वो होगा तो हम दीन पे हैं, अगर वो नहीं तो छोड़ो दीन को, अब ये नहीं होना चाहिए। समझ आए? आपका दीन इस पे नहीं डिपेंड करना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में कोई कयामत बरपा होगी, जैसे मैंने बताया कि उनके लिए तो कयामत थी, यानी कोई अल्लाह ताला माफ करे कि जिंदगी में इतनी बड़ा कोई गम आ गया, जैसे अब इनके जिंदगी में इतना बड़ा गम था ये, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दीन को छोड़ जाएं। एक ईमेल मुझे किसी की आई और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर इतना ज्यादा गम, इतनी ज्यादा परेशानियां आई हैं कि वो अब ये सोच रही हैं कि वो दीन बदल लें। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि दीन बदलने से क्या आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी? तो बाज़ गम जो होते हैं ना, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि फ़क्र से पनाह मांगो, फ़क्र के से पनाह मांगने की दुआ भी है, क्योंकि बाज़ फ़क्र भी इंसान को मोहताजी, फकीरी, यानी इंसान इस नहज पे पहुंच जाता है कि वो कुफर तक आ जाता है, कुफर तक कर लेता है, फ़क्र इतनी ऐसी चीज़ है। तो बाज़ गम भी ऐसी हैं कि इंसान उनके अंदर ऐसे वो होता है और शैतान को मौका मिल जाता, फिर देखा अगर अल्लाह ताला इतना ही तो उसको तुम्हारा ख्याल होता तो तुम्हारे पर ये क्यों डालता, तो देखा अल्लाह को तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, उसको तुम्हारी कोई केयर नहीं है, छोड़ो ऐसे दीन को। तो अब आप देखें यहां से हमें ये लेसन मिलता है कि कोई दुनिया में कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए हमारी जिंदगियों में, अल्लाह माफ करे कोई भी चीज हो जाए, दीन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्या तुम पलट जाओगे अपनी एड़ियों के बल? आप ये आयत में यहां तक में अपने लिए रख के देखें, अपना जो भी आपका कोई मसला है अपना मसला लिखें, यानी कलब तुम अला आकाबिकुम से पहले तक अपना मसला लिखेंगे, ये हुआ या ये मेरे साथ हो गया, तो क्या तुम इसकी बेसिस पे यानी कलब तुम अला आकाबिकुम और फिर आगे पढ़ो, जिस मसले में भी है आप दीन से बदजन हो जाएंगे, अल्लाह ताला के बारे में आपके दिल में बदगुमानी आ जाएगी, उसके बारे में शकुक व शुभात करने लगेंगे। तो हमें बताया गया कि वा मई यनकलिब अला अकिबैही फलन यदुर अल्लाह शैआ, तो नहीं नुकसान देगा अल्लाह को कुछ भी, जो कोई फिरता है ना फिरे, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। आपको मैं पहले भी वो हदीसे कुदसी बताई हुई है, अगर तमाम जिन इंस औरतें मर्द बच्चे बूढ़े कयामत तक आने वाले अव्वल से आखिर तक सारे भी ऐसे हो जाएं जैसे सबसे ज्यादा नाफरमान कोई यानी शैतान के दिल की तरह अल्लाह माफ करे हो जाए, तो तब भी अल्लाह की बादशाहत में एक जर्रे बराबर भी फर्क नहीं आता। तुम दीन छोड़ना है छोड़ दो, अल्लाह ताला को इससे क्या, तुम अल्लाह को थ्रेट करते हो कि मैं तो दीन छोड़ के चल जाऊंगी, मैं तो अल्लाह से नाराज हूं, अस्तगफिरुल्लाह। इस वक्त में इंसान को अपना मुहासबा करना चाहिए, ना कि वो दीन से बदजन होने शुरू हो जाए। तो अगर कोई किसी मसले पे भी आप देखेंगे बाज दफा लोग छोटी छोटी बातों पे कहने लगते हैं हमारे हमें ये ग्रुप लीडर नहीं ना मिली, हमने नहीं पढ़ना, अब हम कोर्स छोड़ रहे, तो भाई किसी का क्या नुकसान करो? हमारा तो बिल्कुल ही कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कौन से, हम आपसे फीसें लेते हैं कि जो हमारे कोई कमी हो जाएगी, कोई का नुकसान नहीं, हमने आपसे क्या लेना है, किसका नुकसान होगा, अपना ही होगा ना। तो जो ऐसा करता है वो अपना नुकसान करता है। कोई लोग कहने लगते हैं अगर आपने हमारी ये बात नहीं ना मानी तो फिर हम छोड़ जाएंगे, तो भाई हमें किस बात की धमकी, आप खुद देखो कि आपको आप कितनी बड़ी खैर से महरूम हो जाओगे। तो अपने आप को डिपेंडेंट ना करें, और ये मेरी ग्रुप इंचार्ज, जो मैं इस ग्रुप में होंगी तो मैं पढ़ूंगी, मैं तो पढ़ ही नहीं सकती इसके बगैर, मैं तो इतनी अटैच हो गई हूं इनके साथ। नो, कोई जात चाहे मैं हूं चाहे कोई ग्रुप इंचार्ज है, हम सब फानी हैं, मर जाना एक दिन। अब मसलन ने कल मैं नहीं होती तो क्या होगा, आप कुरान छोड़ देंगे? नहीं, कोई इंसान है ये, जितने मर्जी हम किसी के साथ अटैच हो जाए, जितनी मर्जी हमें किसी के साथ मोहब्बत हो जाए, मगर हमारा दीन इंसानों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, उस हई और कयूम जात को देखें। और इस बात से मैंने आपको जो बताया कि देखिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत थी, अल्लाह को पता था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में फौत होंगे, अभी तो फौत ही सिर्फ, जब वाकई में फौत होंगे तो फिर मुसलमानों को तसल्ली चाहिए होगी। तो बुखारी शरीफ में यह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुन के मुसलमानों में तो एकदम इतनी, यानी एकदम एक जाहिर गम का पहाड़ टूट गया उनके ऊपर। हजरत उमर का हाल ये था कि वो तलवार लेके खड़े हो गए, उन्होंने कहा वो गम उनको इतना ज्यादा कि उन्होंने कहा अगर किसी ने कहा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। यानी इतने ज्यादा वो जज्बाती इस चीज के अंदर थे। अच्छा, अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में थे, उनका घर थोड़ा सा हटके था बाहर की तरफ, तो वो उनको खबर मिली, वो जल्दी से घोड़े पे सवार होके तशरीफ लाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर आपको उड़ा दी गई थी। मेरे लिए हमेशा ये बहुत इमोशनल होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो चादर थी उसका कोना चेहरा मुबारक से हटा के उनका बोसा लिया और रो दिए, फरमाने लगे मेरे माँ बाप आप पे फिदा हूं, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आप पर दो मौतें कभी जमा नहीं करेगा, जो मौत आप पे लिख दी गई है वो आपको आ चुकी है, इसके बाद कोई मौत नहीं। सोचेंगे वो जिनका तो जीना मरना आपके साथ था, जिनके दिन रात आपके साथ गुजरते थे, जो आपको देखते थे तो खुश होते थे, जिनकी जिंदगी थे आप, मैंने किसी के साथ भी आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत है ना, समझें उसको, इमेजिन करें और समझें कि उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत ही सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से चले जाना उनके लिए क्या उनके दिलों पे गुजरी होगी। इसके बाद वो मस्जिद में तशरीफ लाए और आके हज़रत उमर से फरमाया कि आप चुप हो जाएं, चुप हो जाएं, आप खामोश हो जाएं। उनको खामोश करने की कोशिश की, वो नहीं सुन रहे थे, तो फिर खुद खड़े हुए और उन्होंने ऐसी बात की, फरमाया जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो समझ ले कि वो फौत हो गए, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो खुश हो जाए कि अल्लाह हई है कयूम है, उस पर कोई मौत नहीं आनी। फिर उन्होंने यही आयत तिलावत फरमाई। तो जब उन्होंने ये आयत तिलावत फरमाई ना, देखिए हम सब इंसान है ना, कभी कुरान पढ़ने वाले को भी याद नहीं रहता, कभी कोई गम आता है या कोई ऐसी मुश्किल आती है तो कोई और याद करा दे उसको। अब सारे सहाबा थे क्या, वो नहीं कुरान पढ़ते थे पहले? लेकिन वो कहते हैं हमें ऐसे लग रहा था ये आयत अभी उतरी है, ये आज उतरी है, सबको ये याद आ गई। और उसके बाद तो हर बंदे की जुबान पे ये आयत ऐसी थी कि जो जिधर जा रहा था वो बस यही आयत पढ़ रहा था। और जिस वक्त हजरत उमर ने ये बात सुनी है बस उस वक्त फिर उनको यकीन हो गया ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके हैं, फिर तो उनके ऐसे था कि पैरों तले से जमीन ही निकल गई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके बाद जितना अरसा जिंदा रहे तो उसमें उनके लिए तो यही था कि कौन सा वक्त ऐसा होगा कि मैं अपने साथी से जा मिलूं। और हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही फरमाते थे कि ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत पर मुर्तद हूं ना आपकी शहादत पर, अल्लाह की कसम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल किए जाएं तो हम भी इस दीन पर मर मिटे जिस पर आप शहीद हुए। है वो तो उनकी जिंदगी में ये फरमाया करते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उसके बाद बहुत सारे लोग आपको पता है ना कि मुर्तद हो गए थे। ये जो फितना इर्तदाद हुआ था बड़ा फितना था कि उन्होंने कहा कि अब क्या, कोई कईयों ने झूठी नबूवत के दावे कर दिए, जिनमें एक मुसलमा कज़्ज़ाब था। तो ऐसा होता है, और यहीं पे पता चल जाता है कि खरा कौन है और खोटा कौन है, यहीं पता चल जाता है कि कौन है वाकई जो इस दीन के ऊपर वे सच्चा था, पक्का था, मर मिटने वाला था, और कौन थे? भगोड़े थे बस। तो ये दीन इंसानों के ऊपर ना बेस करें, ये दीन जो है ये हम अल्लाह वहदहू ला शरीक के ऊपर ईमान जब लाते हैं, और हर रसूल यही पैगाम देने के लिए दुनिया में आया, उसको छोड़ के और किसी शख्सियत के साथ चिमट जाए, ये नहीं है मकसद। वो जिस मकसद के लिए आए, इस पैगाम को देने के लिए, इस पैगाम को अगर दिल में रासिख ही नहीं किया, इसका यकीन ही दिल में नहीं बैठा, बस शख्सियतों से जुड़ते रहे, तो क्या पाया? तो शख्सियतें कोई माने नहीं रखती, चाहे वो कोई टीचर हो आपके, चाहे वो कोई औलिया अल्लाह में से कोई हो, अब रसूल तो कोई नहीं, लेकिन चाहे वो कोई आपकी पसंदीदा शख्सियत हो, आप बस उसी से उसको सुनना या उसको उसके साथ ही बस अटैच होने को पसंद करते हो, मगर इसके ऊपर हमारा दीन नहीं डिपेंड कर सकता। मोहब्बतें हो सकती हैं, ये अल्लाह की खातिर मोहब्बतें होती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने मोहब्बत की, अल्लाह वालों से मोहब्बत होनी चाहिए, मगर ये मोहब्बत ऐसी ना हो कि वो नहीं है तो बस हम गए अब काम से, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सबसे ऊपर वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं, उनमें सबसे ऊपर उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, और यही तो सिखाने के लिए रसूल आए। अब अल्लाह की मोहब्बत ही पीछे हो जाए तो फिर क्या? तो ये हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है अगर कोई ऐसा करता है, वह सैयजिल्लाहु शाकिरीन, अन करीब अल्लाह जजा देगा शुक्र करने वालों को। शुक्र करने वालों को यहाँ पे क्या ताल्लुक आ गया? शुक्र यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत इस दीन की दी है, जो इस दीन को अपनाए रखेंगे, जो इस दीन पे साबित कदम रहेंगे, उन्होंने वाकई शुक्रगुजारी का हक अदा किया ना, वो ही शुक्रगुजार हुए ना। शुक्रगुजार तो वो है जो अल्लाह की नेमत को पहचान ले, उसकी कदर करे, ये थोड़ी है कि ये शुक्रगुजारी थोड़ी कि आज अल्लाह की दी हुई नेमत के ऊपर चले, कल को उसको साइड पे किया और कहीं और चल पड़े, नहीं। तो दीन इस्लाम के वाकई जो कदरदानी करने वाले, इसी के ऊपर चलने वाले, उन्होंने वाकई शुक्रगुजारी की इस दीन की, तो अल्लाह उनको इसका अजर देगा। तुम्हें तो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने नबी भेजा था कि वो तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाए, तो वो जरिया थे, तब तुम इस दीन की कदर करते हुए इसके ऊपर चलो। और दूसरी बात देखें कितनी अहम बात है जो हमें सिखा दी गई, वमा काना लि नफ्सिन अन तमूत इल्ला बि इज़्निल्लाह किताब मुअज्जला, कोई नफ्स नहीं मरता मगर अल्लाह के इज़न से। तो ये मुझे बताएं कि अगर हर नफ्स अल्लाह की इजाजत से मरता है, उसके बगैर नहीं मर सकता, तो क्या किसी की मौत के ऊपर अल्लाह के साथ गिला शिकवा या किसी और चीज को बुरा भला समझना कि ओ ये है जिसने इसको मौत दी? नहीं, सिर्फ मौत अल्लाह के इज़न से हो सकती, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई किसी का वार किसी को नहीं मार सकता। मौत का वक्त जो है वो किताब मुअज्जला है, लिखा हुआ मुकर्रर है। किस वक्त लिख दिया जाता है पता है आपको? जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, 120 दिन होते हैं उसके ऊपर गुजरते हैं बनते हुए, उसको उस मरहले पे होता है, तो उस वक्त एक फरिश्ता आता है जो उसकी मौत का वक्त लिख देता है, इसने इस वक्त मरना है, 80 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, ये दिन, ये वक्त, ये घंटा, ये सेकंड। फरिश्ते जो लेने आते हैं ना, मौत के फरिश्ते, वो एक सेकंड भी पहले उसकी जान नहीं निकालते, एक सेकंड एग्जैक्ट डॉट पे ना, वो लेट होते हैं कि वो आने में लेट हो गए, हमारी तरह नहीं है वो कि जहां जाए तो लेट ही जाए, नहीं, वो बिल्कुल अपने टाइम पे। तो फिर जब ये अल्लाह की तरफ से ही लिखा होता है, तो फिर इसके ऊपर इतनी, हाँ, जाने वाले का गम अपनी जगह है, वो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस चीज के ऊपर इतना गिला, शिकवा, शिकायतें, या ये सोचना कि हाँ फलां चीज है वो ऐसे ना होती तो ये होता, वो ना होती तो वो होता, नहीं, वो तो लिखा हुआ है। इसी वजह से बस कहते हैं ना कि मौत से ज्यादा हिफाजत करने वाली कोई चीज नहीं, यानी जिस वक्त किसी की मौत आनी नहीं है तो कोई उसको मार ही नहीं सकता, चाहे उसके ऊपर कितना भी क्या भी मुसीबतें पड़ जाएं, क्या भी हो जाए, कोई भी उसको मारने की कोशिश करे, साजिशें करे, जो मर्जी तैयारियां करता रहे, मार नहीं सकता। और ये चीज इंसान को कितना डर डर बना देती है, इसीलिए तो मुंह में न डर होता है, डरपोक नहीं होता, काफी डरपोक होता है, उसको लगता है हाय ऐसे हो गया तो हाय मैं मर ना जाऊं, हाय ये हो गया। मोमिन को जब ये पता है, देखो तुम्हारे तो कुरान में लिखा है, लोगों तुम कैसे डर सकते हो, तुम्हें क्यों इतने खौफ में रहते हो, खौफ पता है कौन खाता है, अभी आगे आ जाएगा कि रोब कौन खाता है, तुम तो न डर हो, हमारा कहना नफ्से ना तमूता अल्लाह बिल्लाह किताब मौजला, अल्लाह ने जो लिखा हुआ है उसके सिवा, उसके इज़न के सिवा कोई मर नहीं सकता। अब इसके बाद जब ये पता चल जाता है, जब ये यकीन आ जाता है, तो कोई मुसीबतें भी इंसान के ऊपर आती हैं ना, मसले भी आते हैं, बर्दाश्त करने आसान हो जाते हैं, इसलिए कि पता है कि चले तो जाना ही है, और डर भी किसी से नहीं लगता, कौन कुछ कर सकता है। जहां पे मेरी लिखी हुई है वहीं आनी, आगे भी आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर और डिस्कशन आती है। वह मई यूरिन सवाब दुनिया नुक्ति ही मिनहा, वह मई यूरिन सवाब अल आखिरती नुक्ति ही मिनहा। थोड़ी ऐसी बातें हैं ये सारी ना, सोने के पानी से भी लिखे तो हक नहीं अदा हो सकता, यानी इतनी प्यारी रहनुमाई है हमारे लिए जिंदगी में चलने के लिए। ये देखो मौत से मत डरो, ये लिखी हुई है अल्लाह के यहाँ, पहले नहीं आ जाने। तो कई लोग ना मौत का जिक्र करते हुए भी कहते हैं हाय ये मनहूस बातें ना करो, मौत की ना बातें करो, पता नहीं जैसे उनको लगता है कि पता नहीं अगर ये बात कर ले तो जल्दी आ जाएगी। हाँ पता नहीं किसी को याद नहीं है तो हमने बता दिया तो वो उसको याद ही ना कहीं आ जाए, कितने नादान है, कितने बेवकूफ है। इंसान जिंदगी के पीछे भागता है भागता है भागता है, और मौत उसके ताकुब में खड़ी होती है, उसको पता नहीं होता, सारी जिंदगी मौत का नाम ना ले और उसको भूले रखे, क्या उसको नहीं मौत आनी, वो तो पैगंबरों को भी आई, वो तो बड़े बड़े औलिया अल्लाह को भी आई, बड़े बड़े जंगजुओं को आई, बड़े बड़े पहलवानों को आई, कोई मौत को पिछाड़ नहीं सका, मौत ने सबको हरा दिया। तो जब वो आनी है तो तब वो तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए कि मौत के आगे इंसान बेबस है, और सारी दुनिया भी मिल जाए और मौत का वक्त लाना चाहे और नहीं लिखा हुआ ना तो आ नहीं सकता, तो अब से ना डर हो जाए, ना डरा करे मौत से, आए मर ना जाऊं, आए मर ना जाऊं, ऐसा ना हो जाए मर ना जाऊं, और नहीं मरते, लिखा हुआ वक्त। और कईयों का देखें सुभान अल्लाह, इससे ही से एक बात याद आई कि लोग कोरोना से डरते कि भाई मौत ना आ जाए, मौत ना आ जाए, तो नहीं हालात में किसी के एक्सीडेंट से मौत हो गई, वहां से बचते बचते देखो जब आनी है और जिस जगह आनी है और जिस दिन आनी वो आके ही रहनी है। अब कोई चीज किसी को मार नहीं सकती, अब हम सोचते बीमारियां मार देती, बीमारी नहीं मार सकती, कोई चीज नहीं मार सकती, जिस जगह जिस वक्त अल्लाह ने जिस तरह से लिखी वो वैसे ही है। और फिर जो इरादा करता है ना, जो अमल करता है दुनिया के लिए, देखिए दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपका ये हो कि मुझे इससे ये मिले, कोई तो नियत होती है, या तो वो दुनिया की कोई चीज होगी या आखरत की कोई चीज होगी, दोनों में से एक जरूर होगी। अब कोई इरादा करता है दुनिया के सवाब का, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसको वो दे देंगे, जो आखरत का सवाब चाहेगा अल्लाह उसको वो दे देगा, ऐसा नहीं होगा जो दुनिया का सवाब चाहता है, दुनिया का बदला चाहता है, उसको अल्लाह आखरत का दे दे। अगर तुम्हें इसकी ही तुम्हारी नियत है तो यही मिलेगा, और जिसकी आखरत के लिए नियत है उसको वो मिलेगा। अब देखें बहुत सारे हमारे काम है। आप ऐसा करें, आप पेज में अपने बल्कि दो कॉलम बना लें, बीच में लाइन लगाएं, दो कॉलम बनाएं, एक तरफ लिखें दुनिया के लिए काम करने वाला और दूसरी तरफ लिखिए आखिरत के लिए काम करने वाला। अब इसमें आप पॉइंट्स लिखें, दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों का मकसद क्या है, दोनों का काम करने का तरीका क्या होता है, दोनों किस चीज को प्रायोरिटी बनाते हैं, दोनों किस बात के ऊपर तेज दौड़ते हैं और किस बात पे रुक जाते हैं, दोनों की उम्मीदें क्या होती हैं और दोनों के अंजाम क्या होते हैं, नतीजे का भी कंपैरिजन करें, इसका नतीजा क्या है और उसका नतीजा क्या। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, नुति ही मिनहा, और उसके लिए भी नुति ही मिनहा, उसको भी नतीजा मिल जाएगा और इसको भी नतीजा मिल जाएगा, लेकिन दोनों के नतीजे में कितना फर्क है, दोनों की कोशिशों और मेहनतों में कितना फर्क है। मुझे जब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की तो एक जगह उन्होंने कहा था, आपकी मास्टर्स का ये है कि आपको इंटर्नशिप करनी है, तो इंटर्नशिप एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके अंदर मैंने इंटर्नशिप की, मुझे एक लड़की के साथ लगा दिया गया। मैंने वहाँ पे जो चीज़ देखी उससे पता चलता है, देखो दुनिया के लिए करने में और आखिरत के लिए करने में कितना फ़र्क है। जब मैं उसके साथ बैठती थी तो हर वक्त उसकी नज़र ये होती थी कि जो बॉस है ना वो मौजूद है कि नहीं। बॉस का जो कमरा था वो उसके आगे शीशा लगा हुआ था, वो बॉस उस कमरे के अंदर बैठता था। अब वो जब तक बैठा हुआ है तो उस वक्त तो बड़ी शौक से और बड़ी मेहनत से काम हो रहा है, और जिस दिन बॉस एब्सेंट हो गया या वो जल्दी चला गया तो खुद भी अपना बैग बंद किया और अब क्या परवाह। उनका सारा काम किसके बेस पे होता था कि बॉस क्या देख रहा है कि नहीं देख रहा, उनकी नीयतें क्या थी, उनके काम करने का तरीका क्या था। और जो आखरत के लिए काम करता है उसको ये नहीं होता फिर कि कोई इंसान मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा, मेरे ऊपर बैठी हुई कोई भी इंचार्ज है मेरी तो वो मुझे चेक कर रही है या नहीं कर रही, तो आखरत के लिए कर रहा है, उसको नहीं जरूरत होती कि मुझे कोई देखे मेरी कोई, मैं किसी की नजरों में हूं। तो फिर जब ये होता था कि किस वक्त घंटी बजे और बस काम खत्म हो और हम बस बैग अपना बंद करें और जाए, जो ही 5 बजते थे उससे 10 मिनट पहले हर चीज बंद करके बैठ जाती, जब जाने का टाइम है 10 मिनट सिर्फ वेट हो रहा होता था, घड़ी देखी जा रही होती थी। आखरत के लिए काम करने वाला कैसे करता है, घड़ियां देख देख के। तो फिर जो जिसके लिए करेगा उसको वही मिलेगा। हम अपने आप को चेक करें कि जब हम काम करने लगते हैं तो हमारे काम किसके कामों के मुमासलत है, ये जो दो कॉलम बनवाए हैं ना इनमें कहीं तो आपका काम फिट होगा, दुनिया के सवाब के लिए कि आखरत के सवाब के लिए, उसमें सारे ही अपने काम लिख लें। मैं घर में सफाइयां करती हूँ, मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं ये करती हूँ, किस लिए कर रही हूँ, मैं बंती संवरती हूँ, मैं मेकअप लगाती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, किसके लिए, सवाब दुनिया या सवाब आखिर। कहीं हर आपका काम इन दोनों कॉलम्स में से कहीं ना कहीं जरूर फिट बैठेगा और उसी के मुताबिक आपको बदला भी दिया जाएगा। अब सौदा हम क्या करते हैं, घाटे का, एक घाटे का ही सौदा है कि बस दुनिया में मिल जाए या हमेशा की जिंदगी के लिए। सिर्फ जाहिर में किए जाने वाले काम नहीं देखने, उसके पीछे नीयतें क्या हैं वो देखनी है। बजाहिर बहुत बड़ी बड़ी नेकी के काम होते हैं, नीयत खराब होती है, उसकी वजह से बड़ा काम भी बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो देखें, इवन हम यहाँ पे जो पढ़ने के लिए बैठे हैं हम किस नीयत से बैठे हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं आलमा कहलाऊंगी, मैं लोगों में अपनी धाक बिठाऊंगी, मैं भी किसी को जवाब देने के काबिल होंगी, मैं ये करूंगी, क्या नीयत है। इन दोनों कॉलम्स में से आपका पढ़ना किस तरफ जाता है, सवाब दुनिया या सवाब आखिर, सोचने की बात है ये। वसनजज़ी शाकिरीन, और हम जजा देंगे शुक्र गुजारों को, यानी जो आखरत के लिए काम करने वाले हैं उनको हम जजा दिया करते हैं और उनको अच्छा बदला अल्लाह देगा, उनके लिए अच्छा बदला। जो शुक्र गुजार कौन होता है, जो एहसान को पहचानता है, जो दिल से उसका एतराफ करता है, जो देने वाले के आगे आजजी रखता है, जो देने वाले यानी जो उसका मोहसिन होता है, जो उसके ऊपर एहसान करने वाला होता है, उससे मोहब्बत करता है। ये शुक्रगुजारी का हिस्सा है। ये जो मैं आपको इतराफे नेमत कह रही हूँ, बाज लोग इतराफ भी नहीं करते। वो कहते तो क्या हुआ, अगर उसने मेरे साथ कर ही दिया अच्छा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो अगर जा ही रही थी, मुझे साथ ले गई, तो मेरे पर कोई एहसान है उसका। हाँ तो वो फारिग ही बैठी हुई थी ना, अगर उसने हाथ हिला ही दिया तो कौन से बड़ा काम कर दिया। ये नाशुक्री है। हाँ तुमने मेरे लिए कर भी दिया तो तुम्हारा फर्ज था ना। ये नाशुक्री है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी नाशुक्री से बचो जो तुम पर एहसान करते हैं, बचो उनकी नाशुक्री से। अगर हस्बैंड कमा के लाते हैं तो ये नहीं कि ओ ये इनका फर्ज ही है, बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करना इनका फर्ज है। नहीं, शुक्र गुजारी होनी चाहिए इस पे। ठीक है, देखिए छोटा सा भी चीज है ना, उसमें भी समझें कि ये नहीं सोच के कह दें इस चीज को ये फर्ज है। जैसे कई बच्चे हैं वो वालदेन को कह देते आपका फर्ज ही है, अगर आपने हमारी परवरिश की तो कौन सा ऐसा कारनामा कर दी, ये तो आपका फर्ज था। तो कैसा लगता है फिर। इसी तरह बाकी जगहों पे भी रख के देख ले, किसी को भी ये कहने से पहले ना कि ये इसका फर्ज ही है तो कौन सी बड़े काम कर दिए इसने, सोचा करें कि नहीं ये नाशुक्री के कलेमात है, ये शुक्रगुजारी नहीं है। चाहे हस्बैंड है, वालदेन है, कोई भी है, शुक्रगुजारी का रवैया अल्लाह को पसंद है। और किसी की भी की हुई काम को भी लिटिल कर देना, हकीर कर देना, देखो तुमने क्या कर दिया ऐसा, हाँ तो खुद ही कर रही होगी, हाँ तो कोई ऐसी बात नहीं जो कर भी दिया तो, ये नाशुक्री के कलेमात। मैंने कोई तुम्हें कहा था, हाँ तो खुद ही करती रही तुम, ये भी नाशुक्री है। तो जिंदगी में इतने नाशुक्री के हम कलिमात बोलते रहते हैं, रियलाइज नहीं करते। अल्लाह शुक्र गुजारों को और अता करता है, और शुक्र गुजारी से आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बढ़ जाती है। शुक्र गुजारी सिर्फ अल्लाह की नहीं होती, अल्लाह के बंदों की भी होती है। कोई आपके साथ भला करे उसमें शुक्र गुजारी करे। और देखें शुक्र गुजारी हम दफा बाहर वालों की तो बहुत करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि हम उनके सामने तो बड़े गुड मैनर्स अपनी दिखाना चाहते हैं ना, लेकिन घर वालों की कोई शुक्र गुजारी नहीं। इनका क्या है, तो घर वाले ही है ना, इनको करना ही चाहिए ना। और ना शुक्री क्या होती है अगर हमारे ये रवैये। तो छोटे से भी किसी काम के काम पे ना, देखे ये असल में ना एक एटीट्यूड होता है, ये जहां पे जो शुक्र गुजार होता है उस अल्लाह का भी शुक्र गुजार होता है, बंदों को भी। तो जो ना शुक्रा होता है ना कदरा होता है, ना कदरे कोई ना शुक्रा कहते हैं, वो फिर सबके साथ ही ऐसे ही होता है। वो अगर थैंक यू भी किसी का करता है तो ऊपर से ही कर रहा होता है, सिर्फ वो भी अपने लिए, ताकि मुझे लोग अच्छा समझें कि मेरी मैनर्स कितनी है। अदरवाइज ये एक रवैया होता है। तो और शुक्र गुजारी में क्या शामिल है कि उसकी तारीफ की जाए जिसने आपके साथ कोई एहसान किया। और फिर और शुक्र गुजारी क्या है, अल्लाह की शुक्र गुजारी किस चीज में है कि जो नेमत उसने दिया उसको सही जगह पे उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, उसकी फरमा बरदारी की जाए, ये शुक्र गुजारी। ये नहीं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह की तस्वीयां तो कर लेती हूँ और उसके बाद वो अल्लाह की नाफरमानी है कि वो अल्लाह याद ही नहीं है कि उसने मुझे कुछ दिया भी है, ये तो नाशुक्री हो गई ना। तो रवैयों में भी नाशुक्री से बचें, अमल में भी नाशुक्री से बचें, बात में भी नाशुक्री से बचें, और दिल में भी नाशुक्री के जज्बात रखने से बचें। जब दिल के अंदर ही कदरदानी होगी तो इंशाल्लाह जुबान पे भी आएगी, फिर अमल में भी आएगी। और जब दिल में ही किसी को कौड़ी बराबर नहीं आप समझते ना, तो फिर जाहिर ही बात है फिर जुबान पे भी वही, अमल में भी वही। तो कदर जाने इंसानों की, और फिर अल्लाह ताला की, तो हम कभी भी वो शुक्रगुजारी कर ही नहीं सकते जितने उसके एहसान आते हैं। तो फिर कितना उसके आगे झुकना चाहिए, ये कितना ज्यादा उसकी फरमाबरदारी करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला का करम है, वैसे ही हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी जो कुछ हमें मिला हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये नहीं, ये तो तुम्हारा फर्ज ही है, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया हुआ है, तुम्हें तो शुक्र करना ही नहीं, करना ही चाहिए था। अल्लाह ताला फरमा रहा है सनजज़ी शाकिरीन, हम बदला देंगे शुक्रगुजारों को, अच्छा बदला देंगे उनको, अच्छी जजा देंगे। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला और उनको नवाजेगा।
ला इन शकर तुम ला अजीद अन्ना को, अल्लाह तला ने फरमाया तुम शुक्र करोगे ना मैं तुम्हें और दूंगा। ये नहीं फरमाया कि लो तो तुम पहले नहीं इतना दिया हुआ, जैसे हम कह देते हैं ना, हम कह देते हैं ना कि भाई ना हाँ तुम्हें तो तुम्हारा काम ही था, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है तुमने किया। अल्लाह ताला ये नहीं कहता ये तो तुम्हारा काम ही था, तुम्हें शुक्र करना ही चाहिए था, तो तुमने शुक्र कर लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। नहीं, वो कहता है मैं तुम्हें और दूंगा। ये होते हैं जब अल्लाह ताला बड़ा है ना तो ये बड़ेपन की बातें, जिनके दिल छोटे होते हैं वो फिर छोटी छोटी बातों पे ही रह जाते हैं। उनके लिए शुक्रिया करना भी ऐसे होता है जैसे पहाड़ चढ़ना, किसी को शुक्रिया कर देंगे तो पता नहीं हमारी इज्जत घट जाएगी। नहीं, इसे घटती नहीं है। वह का अय मिन नबी कातला, और कितने ही नबियों में से ऐसे नबी गुजरे हैं, मिन नबी ये नबियों में से ऐसे नबी कातला जंग लड़ी, माहा माहू उसके साथ उस नबी के साथ, रिबियूना कथीर उनके साथ अल्लाह वालों ने, बहुत सारे अल्लाह वालों ने उनके साथ मिलके जंगे लड़ी। यानी क्या मतलब कि ए मुसलमानों जरा तुम तारीख तो उठा के देखो, कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि कोई जंग हुई है और जंग में ऐसा हो गया, और बहुत सारे नबी आए उनके साथ अल्लाह वालों ने लड़ाइयां लड़ी। अब देखिए कुरान पाक में सारों का जिक्र नहीं है, सारे नबियों का हालात सब नहीं आते, इतने नबी आए 1,24,000, हमें सबकी तो नहीं तारीख पता, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें बता दिया इतने बहुत सारे नबी आए जिनके साथ लोगों ने जंगें की, तो फिर इन नबियों के साथ कौन होता था लड़ने वाला? अल्लाह वाले होते थे, अल्लाह वाले होते थे जो इनके साथ मिल के लड़ते थे। फिर क्या होता था, फिर उनसे ना हमें लेसन दिया, और मुसलमानों को उस वक्त जो वो जंग में थे और उनके ऊपर ऐसा एक पहाड़ टूटा था गम का, एक मुसीबत का, तो उनको बताया गया तो यू आर नॉट द फर्स्ट वंस, तुम सोचते तुम पहले ही हो जिनके साथ ये हुआ, नहीं पहले भी हुआ। फिर क्या होता था जब वो उनके साथ मिलके लड़ते तो होता क्या था? फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, उन्होंने सुस्ती नहीं दिखाई जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आई, तो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में आने वाली जो मुसीबतें उन पे पड़ी उनसे दिल शिकस्ता नहीं हुए कि इतने दिल छोड़ के बैठ जाएं कि बस अब उठ ही नहीं सकते, बस अब हमारी हिम्मत ही नहीं रही, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं उन्होंने किया। तो वो लोग हिम्मत करते थे कि ये दुनिया ना बड़ी इम्तिहान की जगह है, यहाँ पे इंसान स्ट्रगल्स करता है, एक जैसे हालात नहीं रहते। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा, हम ये दिन ना बदल बदल के लाते रहते हैं, फेरते रहते हैं। तो अब उसके अंदर जब उनके ऊपर अल्लाह के रास्ते में मुसीबतें आई जंगों में, या आज हम सोच लें कि अल्लाह के रास्ते में हमारे ऊपर कोई मसले आते हैं, तो उस वक्त हमारा किरदार क्या होना चाहिए? जैसे वो रब्बानी लोगों का था, अल्लाह वालों का था, जो पैगंबरों के साथ मिलके रहते थे उनका था, तो वो क्या करते थे? वो कभी नहीं इस तरह हौसले हार देते थे, बददिल नहीं हो जाते थे, हिम्मतें नहीं छोड़ देते थे। वह मा दाउफू, और ना उन्होंने कमजोरी दिखाई, ढीले नहीं पड़े, जिस्मानी कमजोरी, मादी कुवत हो काम होना अलग बात है, एक होता है जिस्मानी तौर पे इंसानी हिम्मत हार दे, जोफ तो सुस्त होके नहीं बैठ गए, हमसे नहीं होता अब कुछ भी। वह मस्तकानू, और ना वो दबे, दब के जाना किसी से प्रेशर के अंदर आ जाना कि अब ये हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं अब हम क्या करें, नहीं ऐसे भी नहीं किया कि उसकी वजह से रुक गए हो अपने काम से, छोड़ दिया हो अपना काम। अब देखिए आज के दौर के अंदर पीयर प्रेशर कितना है, सिर्फ बच्चों पे ही तो नहीं होता पीयर प्रेशर, खवातीन पे कितना पीयर प्रेशर होता है, कैसा पीयर प्रेशर होता है ना, उसने ये कपड़े पहन लिया मैं क्या करूंगी, अगर मैं क्या वही जोड़ा पहन पहन के जाती रहूं, और कितना पीयर प्रेशर होता है कि हाँ उन्होंने ये चीजें ले ली और हमारे घर में नहीं है, और उन्होंने नई गाड़ी ले ली और हम वही पुराना मॉडल चलाए जा रहे हैं, और कितनी मुझे शर्म आती है। ये क्या पीयर प्रेशर नहीं, बच्चों को तो हम बहुत कहते हैं, खुद अपने हाल देखे कितने हर वक्त पीयर प्रेशर में रहते, हमारे साथ वाले लोग क्या कर रहे हैं, बस उसके बाद से अब खुद सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए, अल्लाह हम क्या करें अब हमारे तो कोई हिम्मत नहीं, उसी में डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसी में नहीं, वो डिप्रेशन में नहीं चले जाते थे, हौसले नहीं छोड़ते थे, दबते नहीं थे। और यहीं से हम देखें, हम मैदाने जंग में नहीं है, लेकिन जिंदगी के और मैदानों में हम कितनी जगहों पर हौसला छोड़ देते हैं, हिम्मतें हार देते हैं, मुसीबत पड़ती है और हम दिल इतना छोटा कर देते हैं। कितनी जगह है ऐसी, कहीं पे ससुराल के आगे, कहीं पे शौहर के आगे, कहीं पे अपने और खानदान वालों के आगे, कहीं पे अपने बच्चों के आगे, कहीं पे अपने वालदेन के आगे, कहीं पे और लोगों के, जितने हमारे मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब है उनके आगे दबे रहते हैं। हर जंग में हम हार रहे होते हैं, हालांकि जो अल्लाह वाला है उसको तो नहीं ऐसे करना चाहिए कि वो हौसला छोड़ दे, वो मुश्किल पड़ने के ऊपर हिम्मत हार दे, वो लोगों की बातों पे, कभी उनके मजाकों के आगे, कभी उनके तानों के आगे ठहर नहीं पाते। हमारा यही हाल है ना, हम कहते नहीं बस खैर बाद है, इस काम को हमसे नहीं होता, कमजोर पड़ जाते हैं ना, दिल हार देते हैं, दिल छोटे करते हैं, रोने लग जाते हैं, हाय उसने ये कह दिया, इतना दिल छोटा करते हैं। देखो तो वो अल्लाह वाले जो थे वो कैसे थे, वो इस इन बातों को खातिर में नहीं लाते थे, वो जमे रहते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बु सबिरीन, अल्लाह मोहब्बत रखता है सबर करने वालों से, क्योंकि सबर जिसमें होगा वही होगा ना जो ना वहन में मुब्तला हो, ना जोफ दिखाए, ना उस वो दबे किसी से, वो सबर वाला वो ही हो सकता है जो ये सारे कामों को इस तरह से, जैसे यहाँ पे बयान किया गया, जो रब्बानी लोगों के अंदर ये जो सारी सिफात थी इनको इसी तरह पूरा करने वाला हो, वो सबर करने वाला। सबर क्या होता है? डट जाना, डट के खड़े हो जाना, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं नहीं टस से मस होती, इस्तकामत को सबर कहते हैं, जम जाना। और तुम तो मुल्लानी हो गई, तुम तो ऐसे हो गए, इसके ऊपर नहीं अब इतना डिप्रेशन में चले जाना, आए मुझे तो ये कह दिया था, नहीं, वो दबते नहीं है, अल्लाह वाले वो दबा नहीं करते थे। अब ये मुसलमानों को उस वक्त भी बताया जा रहा है जो कि देखिए ओहद में दिल शिकस्ता है, जो ओहद में अब हिम्मत हार रहे हैं, जो भाग रहे थे, अब उनको बताया जा रहा है कि नहीं तुम्हारे से पहले भी तो लोग थे, बल्कि मस्सतहुमुल बक्सा व दर्रा व जुलजिलू, उनके ऊपर तो इतनी मुसीबतें आई, इतनी मुसीबतें आई, जैसे हमने उस वक्त भी पढ़ा था कि उनके जिस्मों के अंदर लोहे की कंघियां चला दी गई, उनके सर रख के आरे ऊपर रखते थे और चीर देते थे उनके सरों को, उनको जिंदा ही गाड़ देते थे जमीन के अंदर, इतनी उनके ऊपर मुसीबतें आई दीन की वजह से। इस रास्ते में हम में से अल्लाह माफ करे किसके ऊपर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई, क्या ऐसी हमारे ऊपर पहाड़ टूट गए अल्लाह के रास्ते में, फिर भी हमारे अंदर कितनी कमजोरी है, कितनी सुस्ती है इस रास्ते में, जिस्मानी भी सुस्ती है, उठना ही नहीं, बस ढीले पड़े रहना, लेजी है, बस हिम्मत ही नहीं करनी, और इरादों की भी सुस्ती है, आज कोई काम शुरू किया कल को पता ही नहीं है उसका, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई जमाव नहीं है किसी चीज के अंदर, जरा सी किसी ने बात कह दी, जरा सा किसी ने प्रेशराइज किया, बस सारा कुछ भी, तो नहीं, ये हमसे नहीं होता, मेरी नहीं इतनी हिम्मत बातें सुनने की, हमें तो बातें ही काट मारती हैं, हमने क्या करना, और कभी हम बोर हो जाते हैं फिर पलट जाते हैं, हमारे इरादे मजबूत क्यों नहीं, कभी जज्बाती इतने हो जाते, तो इस तरह के लोग ना फिर रब्बानी नहीं बन सकते। हम ख्वाहिश तो करते हैं ना, काश हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में पैदा हो जाते, हम क्या करते, वो देखो वो लोग ऐसे हुआ करते थे, पैगंबरों पे ईमान लाने वाले दबते नहीं थे, ना उनके अंदर वहन होता था, करूं ना करूं ये काम मुझे नहीं पता, हाय पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इरादे ही नहीं बन रहे। तो ये दीन के काम में, दीन पे चलने में यही तो रुकावटें बनती हैं। देखिए या तो आप वैसे ही आपके अंदर हिम्मत नहीं, इरादे की कमजोरी है, या जिस्मानी तौर पे ही आप सुस्त हैं, या फिर आप दब जाते हैं लोगों से, तब ये दीन पे कैसे चला जाएगा। इसलिए इसमें ये नहीं सोचना चाहिए मुझे आप कोई मोटिवेट करे, मुझे कोई आप उठाए, मुझे कोई आप ऐसा लेक्चर दे। हर वक्त आपको कोई लेक्चर देने वाला नहीं होगा, खुद हिम्मत करनी है, खुद खड़े होना है। और ये सोच लेना कि ये देखिए, ये यहां से पता चलता है, समझ जाए इस बात से कि वो पिछले लोगों के ऊपर भी ना इतनी ऐसी नहीं थी कि दीन का रास्ता बड़ी फूलों की सेज थी जी, वो उनको लोग हार पहनाते थे, हमारे ही हालात बड़े मुश्किल हैं उस जमाने में, तो लोग कर लेते थे, आज हमारे जमाने में ऐसे, यही हम शिकायतें करते ना। तो यहां से पता चलता है नहीं, ऐसा उनके लिए भी कोई कोई बहुत रोजी पिक्चर नहीं थी, वो बड़ी मुश्किलात के अंदर डट के चलने वाले थे। तो ये रास्ता ही मुश्किलों का है। अगर सॉरी, अगर आप ये समझते हैं ना, ये फूलों की सेज है, अल्लाह के रास्ते में चलेंगे और लोग हमारी बड़ी तारीफें करेंगे, हमें हार डालेंगे और हमें बड़ा पसंद करेंगे और हमें ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं होता। इस रास्ते में मुश्किलें भी आती हैं, इस रास्ते में मसले आते हैं, इस रास्ते में लोग बातें भी बनाएंगे, तो आपको तंग भी करेंगे, लोग आपसे बायकॉट भी हो सकता है करते हैं, आपकी दोस्तें हो सकता है आपको छोड़ के चली जाए, तो फिर क्या करेंगे आप ही छोड़ देंगे दीन को? नहीं, मेरी दोस्तें मुझे छोड़ रही थी ना, इसलिए बस इतना ही कच्चा था आपका दीन। नहीं, वो लोग मेरा मजाक बड़ा करते थे, मेरे पर टॉन्ट बहुत करते थे, तो बस इतनी हिम्मत थी कि अल्लाह के रास्ते में एक ताना भी नहीं बर्दाश्त हुआ। अल्लाह के रास्ते में किसी ने आपके हिजाब के ऊपर कुछ कह दिया तो आप बस छोड़ छाड़ के बैठ गए, बस इतनी डिटर्मिनेशन थी आप, इतनी साबित कदमी थी। तो नहीं, ये रास्ता सबर वालों का, इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे ही सबर वाली सिफत लाके, ये नहीं फरमाया अल्लाह हु यहब्बुल मोहसिनीन, क्योंकि यहाँ पे मोहसिन की बात नहीं बनती, यहाँ पे सबर वालों की बात बनती है कि जो हर चीज से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, वो नहीं हटेगा, वो डट जाएगा, वो कहेगा तू आंधी आए, तूफान आए, जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी हो जाए, इस रास्ते से मैंने नहीं हटना, और जो मर्जी कोई कहता रहे, आई डोंट केयर, तू मेरे से नाराज होते होते रहो। देखे ना, लोग नाराज भी हो जाएंगे, कई नाराजगियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन वो हदीस फिर याद रखिएगा कि जो इंसान अल्लाह ताला को नाराज करके लोगों को राजी करता है ना, तो अल्लाह ताला उन लोगों को भी उससे नाराज कर देता है। इसीलिए आप कहते हैं ना, एक दिन आए हाय इनकी खातिर तो मैंने इतना किया, ये किया, ये किया, और ये फिर भी नहीं मुझसे खुश होते, ये फिर भी मुझसे राजी नहीं, तो अल्लाह ने इसलिए क्योंकि आपने अल्लाह को नाराज करके इनको राजी किया था। और जो लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी कर देता है, तो अल्लाह ताला भी उन लोगों का दिल एक दिन उसे राजी कर देता है। तो कभी इंसानों की खातिर अल्लाह को नाराज ना करें, बहुत घाटे का सौदा आप करेंगे अगर आप कभी इन इंसानों की खातिर, चाहे वो आपकी सगी औलाद ही क्यों ना हो, अगर इनकी खातिर कभी आपने अल्लाह को नाराज किया ना, देखना पलट के एक दिन अल्लाह आपको दिखाएगा, वो ही औलाद आपके मुंह पे कहेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया, आप कौन सा ऐसा हमारे लिए कर चुकी हैं। एक दिन वो ही औलाद ऐसा तमांचा मारती है ना कि फिर इंसान से संभला नहीं जाता, एक दिन वो ही लोग ऐसी सुनाते हैं ना कि फिर इंसान कहता है हाय हाय ये मैंने क्या किया, लेकिन अल्लाह को नाराज कर चुका होता है। तो एक एक जिंदगी में एम बना ले, अल्लाह को नाराज करके मैंने नहीं किसी को राजी करना, चाहे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, चाहे वो मेरी कुछ भी हो जाए, मेरे अल्लाह से आगे तो नहीं है मेरे लिए। बस जिस दिन आपने ये सोच लिया ना और ठान लिया जिंदगी, जिंदगी आपकी बड़ी आसान हो जाएगी, हमें ज्यादा सोचे नहीं सोचनी पड़ेंगी, वरना तो गिरते पड़ते ही रहेंगे हर जगह पे, हाय हाय ये ना नाराज हो जाए, हाय वो ना ऐसे कह दे, हाय वो ना माइंड कर ले, हाय हाय वो ना मुझसे मुझे कोई ताना दे दे, हाय वो ना कहीं मेरा मजाक उड़ा ले। तो परवाह ना किया करें, रूठते हैं रूठते पड़े, नाराज होते हैं होते पड़े, अल्लाह उनको एक दिन राजी कर देगा। और ये मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बे से सीखा है, अल्लाह ताला की खातिर, वाकई अगर आपने अल्लाह की खातिर किसी को भी नाराज किया ना, अल्लाह उनके दिल खुद ही आपकी तरफ से राजी कर देता है। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह किसी का दीन रखता नहीं है। अच्छा, फिर वो कैसे लोग थे? देखो दबते नहीं थे, देखो कमजोरी नहीं दिखाते थे दीन के रास्ते में, देखो सुस्ती नहीं, सुस्ती भी एक जो होती है ना इंसान को पीछे छोड़ देती है। इंसान अगर हिम्मत हार दे, नहीं मुझसे नहीं होता, तो वो भी फिर आगे बढ़ नहीं सकता इस रास्ते में, तो हिम्मत नहीं हारनी होती, ठीक है। अब आप इस रास्ते में भी चले हैं ना, इल्म के रास्ते में, हिम्मत नहीं हारनी है। मुश्किलें आएंगी, मुश्किल सबक भी आएगा, आसान भी होगा, लेकिन आप जब चलते रहेंगे ना, अल्लाह आसान कर देगा। इसी तरह किसी से दबना नहीं है, कमजोर नहीं पड़ना। जब अल्लाह आपका साथ हो जाता है ना, फिर कोई मसला नहीं। अल्लाह तो मोहब्बत करता है सब्र वालों से, ये नहीं सिर्फ फरमाया के साथ होता है, अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए। इतनी मर्जी मुखालफतें हैं, सब लोग एक तरफ, अल्लाह की साथ एक तरफ। इतनी प्यारी बात लगती है जब ये पढ़ते हैं, अल्लाह मोहब्बत करता है। तो इस मोहब्बत के लिए भी तो कभी कोशिश करें कि मैं उन लोगों में हो जाऊं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो अब उहद में जिन पे कमजोरी आई है, उनको तसल्ली दी जा रही है, क्योंकि इंसान उनसे हौसला लेता है ना जो दूसरे लोग करते हैं। अब हम भी जैसे इन लोगों से हौसला रह रहे हैं, तो उनकी मिसाल सुन के इंसान फिर कहता है, नहीं मुझे भी डटना है, नहीं मुझे भी नहीं ये रास्ता छोड़ना, मुझे भी दिल छोटा नहीं करना। तो जब भी लोग अल्लाह के रास्ते में चले हैं, उनके लिए मुखालफतें आई हैं, मगर वो काम छोड़ के नहीं बैठ गए, ठीक है, ये याद रखिएगा। वमा कान कौलहुम, और अल्लाह ताला ने उन्हीं की और मजीद सिफत क्या बयान की, उनकी कोई और बात नहीं होती थी, बट उनकी क्या सिर्फ बात होती थी, इल्ला अन कालू, मगर ये कि वो क्या कहते थे, रब्बना गफिर लना दुनूबना, ए हमारे रब बख्श दे हमारे गुनाहों को। देखिए सुभान अल्लाह, इतनी मुश्किलें उठाते थे फिर भी चलते जाते थे, लोगों की परवाह नहीं करते थे, जंगे हो रही हैं उनमें, उनको पिछाड़ने की कोशिश की जा रही, वो कमजोर नहीं पड़ते थे, वो भाग नहीं जाते थे नबियों को छोड़ के, आए हमसे नहीं, ये तो रास्ता बड़ा मुश्किल है भाई, आपके साथ तो बड़ी मुश्किल है, हम तो जब से आए हैं हम तो मुश्किलों में ही पड़े हैं। हमारा तो कुछ लोगों ने, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह हमें ऐसी बातें कहने से भी माफ करे। आगे आप देखेंगे अस्तग़फिरुल्लाह के कुछ लोगों की कैसी बातें होती हैं जब मुश्किल आती है। कुछ लोगों ने कहा हम तो दीन की तरफ जब से आए ना, हमारा तो बिजनेस ही डूब गया, अल्लाह ताला हमें माफ करे ऐसी बातें कहने से। उन्होंने ये नहीं कहा, हाय हम तो दीन में जब से आए हैं हमें तो इतनी मुश्किलें आ रही हैं, हमें तो इतनी बातें फेस करनी पड़ रही हैं, हम तो एक मसले में पड़ गए ना। वो उनके ऊपर जैसे ना वो चट्टान की तरह हो गए। यहाँ पे हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान दे देना, हमारी औलादों को भी ऐसा ईमान दे दे, हम डट जाएं, हम ना दबे। और फिर देखो सारी बातें ये करके उसके बाद होना तो क्या चाहिए था, कि वो कहते कि हाय हम तो कितने अच्छे हैं ना, देखो हमें लोग इतना सताते हैं, हम फिर भी जमे रहते हैं, हम कितने अच्छे लोग हैं, अब तो हम बड़े नेक हो गए। वो क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, उनकी आजजी देखे, रब्बना अग़फिर लना ज़ुनूबना, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, उनको अपने गुनाहों की पड़ी हुई है। ओके, कितना उनकी नजर इस पे नहीं है कि मेरा कारनामा कौन सा है, कि अपने कारनामा को गिनना शुरू कर दे, उनकी नजर में उनके गुनाह है। अल्लाह हमसे कोई गलतियां ही हुई होंगी, अल्लाह हमसे कोई कोताही हुई होगी। जब लोग मुखालफतें करें तो अपनी गलतियों पे नजर करें, जब कहीं से परेशानी आए तो उस वक्त अपने गुनाहों को देखें, हाँ हमसे कुछ हुआ होगा जरूर, ये नहीं कि हमने क्या किया ऐसा, हमारे क्या डायलॉग होते हैं, हमने क्या ऐसा कर दिया जो हमारे ऊपर ये आ रहा है कि लोग हमारी बातें बना रहे हैं, मैंने क्या ऐसा किया, नहीं मैंने ही जरूर कुछ किया होगा, अल्लाह मेरी कोई गलती है, लोगों से जाके नहीं कहना, अल्लाह से कहना। जुनूब कहते हैं छोटे गुनाहों को और इसराफ कहते हैं बड़े गुनाहों को, तो अल्लाह हमारे जुनूब भी माफ करते और इसराफ भी माफ करते, जो हमने ज्यादतियां की सारी ही माफ कर देना अल्लाह। तो अल्लाह हमसे कुछ कोताही हुई है, ये हैं उनकी दुआएं। और दुआ जो होती है वो उस चीज को का इमेज होती है जो उसके दिल में होता है। इंसान को देखना है ना कि वो उसके दिल में क्या है, किस चीज की मोहब्बत ज्यादा है, तो वो उसकी दुआओं से देख ले, और दुआओं में क्या मांगता है, दुनिया मांगता है, आखरत मांगता है, उसकी सोच क्या है, क्या क्या चीज है जो उसके दिमाग पे छाई रहती है, उसकी दुआओं से पता चल जाएगा। तो वो उनकी नजर हमेशा अपने ही गुनाहों पे होती है, वो उनको नहीं बद्दुआएं देने बैठ जाते हैं कि ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, अल्लाह करे ये गारत हो और फलां हो, वो कहते हैं अल्लाह हमसे गुनाह हो रहे हैं, अल्लाह हमारे ही गुनाहों को माफ कर दे, वह सबित अकदामना, अल्लाह हमारे कदमों को जमा दे, फिर भी अल्लाह से हेल्प मांग रहे हैं। ये नहीं कहते हम तो इतने स्ट्रोंग हैं, कोई हमें करके तो देखे कुछ, हम तो हिलेंगे नहीं, हम तो ऐसे हैं, नहीं, अल्लाह हमें तेरी जरूरत है, तू हमें मदद कर कि हमारे कदम जमा दे अल्लाह। वो ये दुआएं करते हैं, और वाकई ये अल्लाह के रास्ते में कदमों का जम जाना, इसमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए हम सबको भी। जैसे हमने ये आले इमरान के शुरू में ही पढ़ा था ना, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, अल्लाह हमारे दिलों को ना फेर देना इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दे दी हो, तो दिल फिर जाते हैं। आज अगर कोई शौक से पढ़ रहा है ना कुरान, कोई पता नहीं कल को क्या हो दिल की हालत। आज अगर आप शौक शौक से कोई काम का अमल कर रहे हैं, कोई पता नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा कुरान पढ़ रहे, बड़ा अच्छा पढ़ रहे, बड़ा अच्छा वो, बस उसके बाद ऐसी ही अक्ल उनकी घूमी और छोड़ छाड़ के सारा कुछ बैठ गए, फिर वापस उसी अंधेरी दुनिया में चले गए। बहुत सारे लोग हिजाब लेते पर्दा करते, फिर एक दिन उनको देखे वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के वही फिर वैसे ही बन गए। तो बहुत सारे लोग पहले नमाजी थे, उसके बाद अब कोई नमाजों का पता ही नहीं है। तो ये सबात इस रास्ते में कि हमारे कदम जम जाए, हम हिले ना यहाँ से मरते दम तक, ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से हो सकता है। तो इंसान फिर अल्लाह से मदद मांगे ना, तो वो कितनी प्यारी दुआ करते हैं ना, अल्लाह हमारे कदम जमा दे, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। और नबियों के साथ मिलके लड़ रहे हैं, ये नहीं कह रहे अब मदद तो हमारी ही हमारे लिए ही होगी ना, और किसके लिए मदद होनी, नहीं अल्लाह तू हमारी मदद कर, हम तेरी तरफ देखते हैं कि तू हमारी मदद कर काफिर कौम के ऊपर। यानी अपने जोरे बाजू पे नहीं हम कहते हम किसी की मदद की नहीं जरूरत, हमें अल्लाह तेरी मदद की हमेशा जरूरत है। ठीक है, फआताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्ना सवाब आखरा। पिछले वाले लोगों के लिए क्या था, जो दुनिया की चाहता है हम उसको दुनिया का सवाब देते हैं, जो आखरत का चाहता है आखरत का देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आज भी जो ऐसे होंगे, आज रसूल तो नहीं है मगर जो भी लोग इस तरह जम जाएंगे अल्लाह के रास्ते में, कमजोरी नहीं दिखाएंगे, सुस्ती नहीं दिखाएंगे, किसी की बात में नहीं आएंगे, चलते रहेंगे और अल्लाह से ऐसे दुआएं करेंगे, अपने ऊपर तकब्बुर नहीं है, अपने ऊपर गरूर नहीं है, अल्लाह से मदद मांग मांग के कदम उठा रहे हैं, उनको अल्लाह ताला फरमाता है हम उनको दुनिया में भी सवाब देंगे और आखरत में भी। अल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अब यहाँ फरमाया अल्लाह मुहसिनीन से मोहब्बत करता है, जो ऐसे काम करते हैं कि खूबसूरती के साथ काम। अच्छा एक इसका आज के वर्ड का, आज की जो लैंग्वेज का ना, मैं एक वर्ड बोलूंगी, खाल उससे आपको समझ आ जाएगा मोहसिनीन क्या है, क्योंकि हमें ये अपनी लैंग्वेज ज़्यादा समझ आती है ना। तो जिसको हम कहते हैं ना प्रोफेशनल, प्रोफेशनल वो मोहसिन होता है। आप देखते हैं ना, आप ये कहते हैं ठीक है खाना सबने बनाया, बेकिंग सबने की, लेकिन आप किसी का देख के कहते हैं ओ ये तो बड़ा प्रोफेशनल है, क्या मतलब होता है उसका, समझ आ गई ना सबको, मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं। अच्छा फिर इसी तरह और कोई काम है, कुछ कोई डेकोरेशन है, कोई कुछ कोई चीज है, तो उसके अंदर बाज ऐसे हैं कि काम कर लेंगे, काम सबने किया, लेकिन कुछ लोगों का काम हाई क्वालिटी का है और उनके काम को देख के ही आपको पता चल जाता है अच्छा ये किसी अनाड़ी का काम नहीं है, इसने बेस्ट तौर पे ये काम किया, फिर आप ये बात कहते हैं बहुत प्रोफेशनल है, ये बड़ा प्रोफेशनल काम किया इसने, है ना। तो वो ही मोहसिनीन होते हैं जो बेस्ट लेवल पे काम करते हैं, और यही वो लोग हैं, इसलिए अल्लाह सिर्फ इनको आखरत में नहीं देगा, दुनिया में भी अल्लाह इनको देगा। और दुनिया की कामयाबी क्या है, दुनिया का सवाब क्या है, दुनिया में भी सरबुलंदी, दुनिया में भी फतुहात, दुनिया में भी नेक नामी, दुनिया में भी इज्जतें, फिर आखरत का सवाब क्या है, जन्नत भी है, अल्लाह की रजा भी है, अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी है, वो तो ज्यादा ही अच्छी है, हुस्ना सवाब आखिरा, आखरत का अच्छा सवाब अल्लाह उनको देगा। क्योंकि दुनिया का सवाब तो जितना मर्जी हो जाए ना, वो कभी बेस्ट नहीं हो सकता, वो तो खत्म ही हो जाना है, असल सवाब जो अच्छा सवाब है वो आखरत का है, और और दुनिया और आखिरत के सवाब का तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते ना, आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि दुनिया और आखिरत के जो सवाब का, जो दुनिया का तो कितना लिमिटेड है और आखिरत का कितना बड़ा है, हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। तो दुनिया का सवाब को हुसना नहीं फरमाया, आखिरत के सवाब को हुसना फरमाया कि दुनिया से बढ़ के हसीन बदला आखिरत का मिलेगा उनको, क्योंकि वो खुद भी मोहसिन थे ना।